दिन भर 6 सितंबर गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत में समलैंगिकता अब अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
इससे ज्यादा खुशी हमने कभी लाइफ में फेस नहीं किया है। हमें लगा नहीं था कि हम ये दिन देखेंगे, मगर आज फाइनली इंसाफ हुआ है।
दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच अहम रक्षा समझौता।
और मैंने सेक्रेटरी पोम्पियो से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो मित्रता है, उसका लेकर भारत के लोगों को लगता है कि अमेरिका उनके हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा।
तेलंगाना सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश, और कैसा रहा SC/ST कानून के खिलाफ अगड़ी जातियों का भारत बंद। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार आदर्श राठौर से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं माने जाएंगे। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों का बहुप्रतीक्षित 2+2 सम्मेलन आज दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और कुछ ऐसे समझौतों पर भी दस्तखत किए जो लंबे समय से लटके हुए थे। उत्तरी जापान में ताकतवर भूकंप के बाद आए भूस्खलनों में दबे कई परिवारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। होकाइडो द्वीप पर आए भूकंप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों अभी भी लापता हैं। ये पता चला है कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे घाटी तक पहुंच गया। आबिरा कस्बे में रहने वाली एक महिला ने भूकंप के बारे में बताया।
ये भूकंप काफी जोरदार था और सब कुछ तेजी से हिल रहा था। फ्रिज के दरवाजे और ड्रॉअर खुलकर नीचे गिर गए। घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, हमें संभलने का मौका तक नहीं मिला।
ये थे जापान के होकाइडो द्वीप पर रहने वाली एक महिला के शब्द। जापान के मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले एक हफ्ते तक इस इलाके में इसी तरह के तेज भूकंप आ सकते हैं। दक्षिण कोरियाई प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति मून जे इन 3 दिन बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से प्योंगयांग में मुलाकात करेंगे। ये एक दशक बाद ऐसा पहला मौका होगा जब दक्षिण कोरिया के नेता उत्तर कोरिया की राजधानी का दौरा करेंगे। चीन ने इस वार्ता का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये वार्ता सफल रहे। हमने इस संबंध में रिपोर्ट्स देखी हैं। हम उत्तर और दक्षिण कोरिया की मुलाकात का स्वागत करते हैं। चीन इन दोनों देशों का पड़ोसी है और परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति स्थापित करने में दोनों की बातचीत और आपसी सहयोग बढ़ाने का हमने हमेशा से समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि ये बैठक कामयाब रहेगी। चीन सकारात्मक भूमिका निभाना चाहेगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में अधिकारियों ने बताया है कि एक पुलिसकर्मी ने अपने कम से कम 9 सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसे आंतरिक हमला बताया जा रहा है। इन्हें उस समय गोली मारी गई जब वे ताकहार में लगे एक नाके पर सोए हुए थे। इसके बाद ये पुलिसकर्मी अपने सहयोगियों के हथियार लेकर तालिबान से जा मिला। हाल के सालों में अफगान सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बीच से अंदर से ही होने वाले इस तरह के हमले बड़ी समस्या बने हुए हैं। दक्षिणी इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने बसरा में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, मगर इसे लागू करने से पहले ही रद्द कर दिया गया। आंतरिक मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि इस कर्फ्यू का उद्देश्य प्रदर्शनों को रोकना था। इस साल बिजली, पानी और नौकरियों की कमी को लेकर नाराजगी के कारण ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें होने के कारण अब तक 7 लोगों की मौत की भी खबर है। रेडक्रॉस का कहना है कि उत्तर कोरिया में भीषण बाढ़ के कारण कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लापता हो गए हैं। हजारों लोग बेघर भी बताए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हुए हैं, जिसके कारण 800 इमारतें तबाह हो गई हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ट्रंप प्रशासन के अधिकारी के रूप में बेनामी लेख उन्होंने नहीं लिखा है। भारत के लिए रवाना होने के दौरान पोम्पियो ने कहा कि ये लेख किसी असंतुष्ट धोखेबाज शख्स ने लिखा है। उन्होंने इसे छापने के लिए टाइम्स की आलोचना भी की। रूस ने ब्रिटानी सरकार के उस आरोप को गलत बताया है जिसमें पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर नर्व गैस से हुए हमले के लिए उसे जिम्मेदार बताया गया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, यानी अब आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। ब्रिटिश राज के समय धारा 377 लागू की गई थी, जिसमें सभी अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने धारा 377 के मूल विचार को खारिज कर दिया। दिल्ली से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
24 सालों की लंबी अदालती लड़ाई के बाद वो वक्त आ ही गया जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक स्वर में समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली धारा 377 को गैर कानूनी बता दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जाना चाहिए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक समुदाय के भीतर प्रेम करने की भावना को 158 साल पुराने कानून के नाम पर कैद करके रखा गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का यह भी कहना था कि शासन को यह अधिकार नहीं कि वो किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर किसी तरह की रोक लगाए। वहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि इतिहास को समलैंगिक समुदाय से उनके साथ की गई ज्यादतियों और भेदभाव के लिए माफी मांगनी चाहिए। अदालत से बाहर आकर वकील आनंद ग्रोवर ने कहा,
आज सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि धारा 377 वो गैर संवैधानिक है। अगर दो जन जो एडल्ट्स हो, जो 18 साल के ऊपर हो, वो स्वीकृति से यौन संबंध करें, तो उसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा।
जजों का कहना था कि किसी से उसके लिंग, जाति या दूसरे आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आनंद ग्रोवर,
सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि ये जो फैसला है ये बुनियादी हक के आधार पे है, धारा 14 और 15 जो भेदभाव और समानता के ऊपर है, धारा 19 है जो फ्रीडम्स के बारे में है, और धारा 21 जिसमें डिग्निटी और प्रिवेसी माना जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला हम दे रहे हैं वो सबके हक के लिए हैं, और LGBTQI कम्युनिटीज़ को पूरे हक हासिल करने चाहिए, और इस फैसले के बारे में पूरा प्रकाशन करना चाहिए, इसकी पूरी पब्लिसिटी कोने कोने में देश में करनी चाहिए।
अदालत का फैसला दिल्ली में आया, लेकिन इसकी गूंज मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची, मुंबई में भी। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में साल 1866 में बने इस कानून को 90 के दशक में अदालत में चुनौती भी दी गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में 377 को अपराध की श्रेणी से हटा भी दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। इस मामले में अदालत में 30 से अधिक याचिकाएं दायर थीं। याचिका दायर करने वालों में केशव सूरी भी शामिल थे। आज के फैसले के बाद उन्होंने कहा
कि स्पेशली कि द कंट्री एंड द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू अपोलोजाइज फॉर द रॉन्ग डूइंग्स टू द LGBTQ कम्युनिटी, कि ये लोग अब शैडोज में नहीं रहेंगे, ये बाहर आ सकते हैं, और हमें और मीडिया को और सबको एक्चुअली कम टुगेदर टू एक्चुअली काउंसिल एंड मेक श्योर दैट वी गेट रिड ऑफ फोबियाज एंड होमोफोबियाज एंड ट्रांसफोबियाज एंड बायफोबियाज एंड दैट फाइनली वी आर रिकॉग्नाइज्ड।
हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लिंग के दो वयस्कों के बीच स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने को सही करार दे दिया है, और कहा है कि हुकूमत को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी से उसकी सेक्स के रुझान के आधार पर भेदभाव करे, लेकिन उन मुकदमों का क्या होगा जो इस तरह के मामलों में लोगों पर चल रहे हैं। वकील अवनी बंसल,
इसको हम एक तरीके से ये समझें कि जिन फैसलों का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और आज यदि कोर्ट उनको सुनती है, तो आज देश में कानून ये है कि 377 जो है वो इलीगल नहीं है, तो आज की डेट में तो उन लोगों को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। जब आज कोर्ट सुनेगा तो कब उसको, जब कमिट किया था, लेट से 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने किसी को 377 के अंदर गिरफ्तारी करी, लेकिन आज जब कोर्ट बैठ के उसका फैसला देगा तो उसको देखना पड़ेगा कि आज में भारत का क्या कानून होगा। आज भारत का कानून ये है कि 377 जो इलीगल है, तो वो सारे केसेस जो है वो आपको रद्द करने पड़ेंगे।
लेकिन धारा 377 में आया फैसला बस एक पड़ाव भर है। अभी समलैंगिक समुदाय को शादी करने, जायदाद और उस जैसे दूसरे बहुत से अधिकारों के लिए आगे भी लड़ाई लड़नी होगी। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
फैसला आने के बाद देश में कई जगहों पर समलैंगिक समुदाय के लोगों और समलैंगिकता के समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। समलैंगिक समुदाय के लिए काम करने वाले NGO हमसफर ट्रस्ट के निदेशक विवेक आनंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हो गए।
इससे ज्यादा खुशी हमने कभी लाइफ में फेस नहीं किया है। हमें लगा नहीं था कि हम ये दिन देखेंगे, मगर आज फाइनली इंसाफ हुआ है। इस वक्त और कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं।
समलैंगिकता की समर्थक इस छात्रा की आवाज भी सुनिए।
मेरी जिंदगी का शायद सबसे खुशी का मोमेंट है, अभी बिलीव नहीं हो रहा है, अभी तो सिंक इन भी नहीं हो रहा, अभी घर जाके थोड़ा रोऊंगी, बट हाँ बहुत खुश हूँ। हम बहुत टाइम से इनविजिबल थे इस देश में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत लंबी लड़ाई है, पर उस लड़ाई में एटलीस्ट एक लीगल एस्पेक्ट कवर हुआ है, जिसकी वजह से होपफुली अब सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स और बाकी के लीगल एस्पेक्ट्स जैसे कि राइट टू मैरी एंड राइट टू अडॉप्ट, वो सब भी कवर होने स्टार्ट होंगे।
जानकारों का कहना है कि पिछले साल आए निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मामले पर दलीलों को प्रभावित किया और आज के फैसले की राह आसान की।
बीबीसी इंडिया बोल।
एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगड़ों की ललकार। तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले चुनौतियों के चक्रव्यूह से बीजेपी को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 8 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या फिर 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब आगे बढ़ते हैं। एससी एसटी एक्ट में संसद की ओर से संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ आज कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। इसे भारत बंद कहा गया था, हालांकि इसका असर मध्य प्रदेश और बिहार में ही ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में अगड़ी जातियों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी मिलकर ये प्रदर्शन किए और वहाँ सत्ताधारी भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
एससी एसटी एक्ट को लेकर देश भर में बुलाए बंद का प्रदेश में खासा असर देखा गया। प्रदेश के हर जिले में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा में एक्ट के विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सपाक्स यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था, सवर्ण समाज, करणी सेना सहित कई संगठनों ने हिस्सा लेकर अपना विरोध जताया। करणी सेना के नेता संजय ठाकुर ने कहा,
देश में जो काला कानून लागू किया एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, इससे भारत बंद का आह्वान किया गया था। सभी जगह सभी जिलों में भारत बंद किया है। सारे व्यापारी संघ, जितने भी परिवहन, पेट्रोल पंप, सारी चीजें बंद है, विद्यालय बंद है, कोचिंगें बंद है, सारी चीजें बंद है। जितने भी लोग हम रोडों पर आए थे और कोई जो छोटे मोटे व्यापारी लोगों ने जो दुकानें खोली थी, हम सब लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया और उन लोगों ने हमारा निवेदन स्वीकार करा और दुकानें बंद कर हमारे साथ रोड पर समर्थन के लिए आए।
प्रदेश के अलग अलग जिलों से बंद के सफल होने की खबर आई है। हर तरफ लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कुल 19 जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी कई जगहों पर लोगों ने निकलकर प्रदर्शन किया। आयोजकों का दावा है कि हर तरफ यह बंद पूरी तरह से सफल रहा है। सपाक्स के पदाधिकारी अजय उपाध्याय ने बताया,
ये बंद जो है सर्व समाज की ओर से सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समझाए सपाक्स और भी तमाम संगठन, करनी सेना, परशुराम सेना, राजपूत संघ, सिंह सभा राजपूत और भी तमाम संघों के द्वारा जो है एकजुट होकर ये जो एट्रोसिटी एक्ट का जो भारत सरकार के द्वारा काला कानून थोपा गया था उसके विरोध में और आरक्षण योग्यता व आर्थिक आधार पर उसकी मांग को लेकर जो है बंद का आह्वान किया गया था। सभी ने जो है पूर्ण समर्थन दिया और 100% बंद है।
वहीं प्रदेश के सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। ग्वालियर में सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए नजर रखी गई। वहीं राजधानी भोपाल में भी बंद पूरी तरह सफल रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निवास पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। शहर में स्कूलों के साथ ही पेट्रोल पंप और हर तरह की दुकानें बंद रहीं। वहीं महिलाएं भी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकली और एक्ट का समर्थन करने वाली पार्टियों को खरी खोटी सुनाई।
तो बताना जा रहे हैं हम कि खाली ताली बजा के आपने समर्थन किया वो नहीं, अब आपके लिए चूड़ी, बिंदी और मांग भरो वाला प्रोग्राम है। आप इसके आगे आए और इस चीज को हमारा साथ दें।
आज के बंद को 35 संगठनों का समर्थन हासिल था। बंद के दौरान सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता कहीं पर भी नजर नहीं आए। प्रदर्शनकारियों में दोनों ही पार्टी को लेकर गुस्सा देखा गया। पिछली बार हुई भारी हिंसा को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई घटना नहीं घटी और बंद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
मध्य प्रदेश के साथ बिहार में भी एससी एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। नवादा जिले से ये आवाजें सीटू तिवारी ने भेजी हैं।
आज संपूर्ण भारत बंद है, उसी के तहत नवादा जिला में भी समान जाति के लोग रोड पर निकल कर शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से बंद करवा रहा है और भाइयों से अपील कर रहा है कि दुकान बंद रखें। नीतीश कुमार
बिहार के आरा में भी प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवा दी और एक ट्रेन का रास्ता भी रोक लिया।
यहीं पे तो है, आपका ट्रेन भी रुक ले है। अरे यार नमता में ट्रेन बंद नहीं है, ट्रेन नहीं रुकी है।
बीस मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम जमानत की व्यवस्था कर दी थी, जिसके बाद दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। दबाव में आई सरकार ने संसद में संशोधन पारित करके अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया था और इसी से नाराज अगड़ी जातियों ने ये विरोध प्रदर्शन बुलाया, जिसे मध्य प्रदेश में ओबीसी जातियों का भी साथ मिला। अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने आज विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है, जिसे राज्यपाल ईएसएल नरसिंहन ने मंजूरी भी दे दी है। यानी अब राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जो अभी तक लोकसभा चुनाव के साथ ही होने थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर ने इसकी जानकारी दी। मैंने हैदराबाद में मौजूद पत्रकार उमर फारूक से संपर्क किया और पूछा कि इसके पीछे क्या राजनीतिक गणित हो सकता है।
इस पे किसी को यहाँ पे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ है कि गत कई महीनों से ये अटकलें चल रही थी कि वो समय के बजाय समय से पहले इलेक्शन चाहते हैं। हालांकि उसका जो कारण उन्होंने खुद बताया वो ये है कि वो अपोजिशन जिस तरह से, विपक्षी दल जिस तरह से उनकी सरकार पे भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लगा रहे थे, उनका कहना था कि इससे राज्य के अंदर एक राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो रही थी, तो उससे खुश नहीं थे और चाहते थे कि एक मरतबा फिर जनता के पास जाया जाए और जनता को इस बात का मौका दिया जाए कि वो फैसला करे कि जो काम गत चार वर्षों में उनकी सरकार ने किया है वो अच्छा काम था या फिर विपक्ष जो उन पे आरोप लगा रहा है वो सही है। तो ये उन्होंने कारण बताया। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि इस वक्त जो राज्य में स्थिति है वो विपक्षी दल से ज्यादा सत्तारूढ़ पक्ष के साथ दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश हुई है मानसून की, जितने डैम हैं वो सब पानी से भरे हुए हैं, किसान खुश हैं और आमतौर पे मूड जो है वो जनता का वो टीआरएस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है टीआरएस के इस फैसले का।
इसके पीछे क्या एक ये भी चीज हो सकती है कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव और उपसभापति के चुनाव में टीडीपी और कांग्रेस एक खेमे में दिखाई दिए थे, तो कहीं ना कहीं केसीआर को लग रहा था कि दोनों पार्टियों में कहीं सपा और बसपा जैसा गठबंधन ना हो जाए अगर 2019 तक चुनाव खींचे तो।
हाँ, इस वक्त विपक्ष पूरी तरह तैयार नहीं है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, दूसरा बड़ा विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी है और तीसरा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। पहले कांग्रेस और तेलुगु देशम की बात की जाए तो दोनों अगर उनको अलग अलग करके देखा जाए तो वो अभी चुनाव की स्थिति में नहीं है, चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बातचीत चल रही थी और ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम जो कि पारंपरिक रूप से देखा जाए तो बहुत पुराने विरोधी हैं, लेकिन अब की बार तेलंगाना राष्ट्र समिति का मुकाबला करने के लिए शायद वो हाथ मिलाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है केसीआर ने जो निर्णय लिया है कि वो सही समय है उनके लिए चुनाव पे जाने का। तीसरा रीजन ये हो सकता है, लगता है सही है कि अगर समय पे चुनाव होते तो लोकसभा के साथ इसके चुनाव होते तेलंगाना विधानसभा के, और केसीआर ये नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मानना है कि अगर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के साथ राज्य के चुनाव मिल के जाते हैं तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होंगे वो छा जाएंगे, चुनाव का मुद्दा अलग हो जाएगा, चुनाव की स्थिति अलग हो जाएगी, तो ये इनको एक तरह का डर था।
जी, केसीआर ने जब विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है तो क्या उन्होंने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं?
बिल्कुल, एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप चुनाव ये भंग होने से पहले वो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने आज बताया भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले उन्होंने चुनाव कमीशन के अधिकारियों से सलाह मशवरा किया था उसकी तकनीकी पहलुओं के बारे में, और जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको इशारा मिला कि हाँ समय से पहले चुनाव हो सकता है, तब जाकर उन्होंने इसको बंद किया है। तैयारी जरूर उन्होंने पूरी कर ली। आज ही उन्होंने अपनी पार्टी के 105 विधानसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। अभी 14 क्षेत्र बाकी हैं जहाँ पे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो भी हो जाएगा 10 अगले एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने कहा। कल ही से वो अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे। उनका पहला चुनावी सभा जो है वो कल हुस्नाबाद में होगा, जो कि उनके पैतृक जिले सिद्दीपेट में है, और उसके बाद वो लगातार 50 दिन तक 100 सभाएं करेंगे, उन्होंने ऐसा बताया है।
तेलंगाना विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश पर हैदराबाद से पत्रकार उमर फारूख को सुन रहे थे आप। भारत और अमेरिका के बीच कॉमकासा नाम का एक ऐसा समझौता हुआ है जो भारत के लिए भविष्य में संवेदनशील अमेरिकी रक्षा यंत्रों की खरीद का रास्ता साफ कर सकता है। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमन और अमेरिका की ओर से पहली बार भारत आए माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की इस मुलाकात का माहौल पहले से बना हुआ था। 2+2 बातचीत के नाम से जाने जाने वाली इस बातचीत पर कुछ अहम समझौतों की उम्मीद थी और हुआ भी वैसा ही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, दोनों देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत के प्रवेश को लेकर मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि H-1B वीजा के मुद्दे पर भी चर्चा अच्छी रही। ये वही वीजा है जिस पर भारत के हजारों IT प्रोफेशनल्स का भविष्य टिका हुआ है। सुषमा स्वराज ने आगे कहा,
और मैंने सेक्रेटरी पोम्पियो से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो मित्रता है उसका लेकर भारत के लोगों को लगता है कि अमेरिका उनके हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा है उनको कि भारत के लोगों के इस विश्वास को वो बनाए रखें।
दोनों देशों के बीच दक्षिण एशिया के हालातों पर भी बात हुई और उसमें अफगानिस्तान की नीति भी शामिल रही। बाद में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। कॉमकासा करार पर दस्तखत होने के बाद भारत अब अमेरिका से अति आधुनिक रक्षा तकनीक प्राप्त कर सकेगा। अब तक भारत को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका से नहीं मिल सकी थी। ये समझौता होने के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बताया तो था, लेकिन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच नहीं रही थी। उधर अमेरिका के दोनों वरिष्ठ मंत्री भी इस यात्रा से थोड़े आश्वस्त दिखे। पत्रकारों से मुखातिब हुए माइक पोम्पियो ने कहा,
The United States will continue to practice partnership economics with India and all the other countries in the region.
जानकारों का मानना है कि इस करार पर दस्तखत होने के बाद दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कानूनी अड़चनें दूर होंगी। हालांकि दोनों देशों ने उद्योग जगत से लेकर वीजा नियमों पर बात तो की है, लेकिन इन बातों पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। जाहिर है पूरी सहमति होने में अभी कुछ कसर मालूम पड़ती है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
और आज गुरुवार है और गुरुवार को आप सुनते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब आपकी राय में।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का,
और मैं हूँ आज इंदु पांडे आपके साथ।
और इंदु पांडे अपने साथ बहुत सारी ईमेल्स भी लाई हैं और चिट्ठियां भी लाई हैं, कुछ तारीफों की और कुछ शिकायतों की, कुछ कांटे कुछ फूल।
ये हमारे पास मेल आया है मनोज कुमार का रांची से। लिखते हैं कि आजकल BBC हिंदी पर प्रियंका दुबे भारतीय किसानों पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें देश के विभिन्न भागों में किसानों की हालात पर जानकारी दी जा रही है। इनकी इस सीरीज को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, जिसमें कलकत्ता से KR विकास हैं, आशुतोष कुमार पांडे हैं, और इसके अलावा काफी सारे हमारे पास चिट्ठियां आई हैं।
हाँ, लेकिन मनोज कुमार रांची से जो लिख रहे हैं, इन्होंने आलोचना की है प्रियंका दुबे की प्रस्तुति की। उनका कहना है प्रस्तुति अच्छी थी, लेकिन प्रियंका दुबे किसानों की मौत के किस्से ऐसे सुना रही हैं जैसे मौत के दर्द को बेचा जा रहा हो। BBC को इस मुद्दे को समग्रता में समेटकर सरकार को सलाह देनी चाहिए कि क्या किया जाए। मनोज कुमार साहब, आपकी ये जो राय है कि मौत के दर्द को बेचा जा रहा है, दरअसल मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि उस दर्द को हम सब महसूस करें। पत्रकार के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं समाज में तकलीफ है तो श्रोताओं के सामने पूरी ईमानदारी से उस बात को रख देना, ये जिम्मेदारी है। और दूसरी चिट्ठियां जो आपने कहा था उसको बारे में ही पढ़ लीजिए।
तो हमारे पास एक चिट्ठी आई है शहर के नाम के साथ, और ये हमारे पास चिट्ठी आई है सरनू बाड़मेर राजस्थान से, और लिखने वाले हैं सुनील शर्मा। ये भी कहते हैं कि आपने किसानों की बदहाली पर आपने जो सीरीज शुरू की है वो वास्तविकता है और आज खेती करना मजबूरी है।
सुनील शर्मा साहब की वही खासियत ये है, श्रोताओं में बता दें आपको, चिट्ठी हाथ से लिखते हैं फिर उसको स्कैन करके ईमेल से भेजते हैं। ये बहुत मुझे इनका पसंद आता है। तो सरनू राजस्थान बाड़मेर से ये लिखते हैं सुनील शर्मा और हमेशा चिट्ठी लिखते हैं। आपको ये प्रियंका दुबे की रिपोर्टें पसंद आ रही हैं, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये एक मैं देख रहा हूँ चिट्ठी आपके पास, ईमेल और है
आशुतोष कुमार पांडे का आरा बिहार से। ये भी कहते हैं कि खेती किसानी की दुनिया से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े होने के कारण खेती किसानी पर लिखे रिपोर्ट में दिलचस्पी रहती है। प्रियंका दुबे ने सबसे जटिल विषय कृषि संकट पर बहुत शानदार रिपोर्ट की है जिसमें संकट के कारणों और उसके बाद के बने हालात को सामने लाया है जिसमें सरकार और समाज के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हुआ है।
जी आशुतोष कुमार पांडे अक्सर लंबी चिट्ठी लिखते हैं और हमारे कार्यक्रमों पर बहुत ही सटीक टिप्पणी भी करते हैं बल्कि विवेचना करते हैं हमारे कार्यक्रमों की। तो ये प्रियंका दुबे तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी कि उनकी रिपोर्टें आपको पसंद आई, धन्यवाद।
और ये हमारे पास मेल आया है डॉक्टर सी एस गोस्वामी का डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से।
आईआईटी कानपुर से लिख रहे हैं
जी। ये एक सुझाव देना चाहते हैं, कहते हैं कि बीबीसी हिंदी सर्विस में नए आने वाले समाचार वाचक एवं प्रस्तुतकर्ताओं से अनुरोध है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को हिंदी टेलीविजन चैनलों की भांति उत्तेजक एवं भावनात्मक बनाने के प्रयत्न से गुरेज करें क्योंकि कई बार नए उद्घोषक जोश जोश में बीबीसी की पुरानी परंपरा से दूर हो जाते हैं। समाचार सिर्फ एक सूचना होती है, उसमें तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है एवं जहां तक हो सके अनावश्यक उत्तेजना अथवा भावना के प्रकटीकरण से बचना चाहिए।
अगर इंदु जी हम कोई पुरस्कार देते अपने पाठकों को चिट्ठी लिखने के लिए तो मुझे लगता है कि ये पुरस्कार जो है गोस्वामी जी को जाना चाहिए क्योंकि इनका ये सुझाव बहुत ही सटीक है और हम सबको बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए। जिसे कहते हैं ना 100% सही है मराठी में, तो 100% सही बात कही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे गोस्वामी जी और हम कोशिश करेंगे कि आपके इस सलाह को हमेशा ध्यान में रखा जाए।
और हमारे पास ये पोस्टकार्ड आया है सुरेंद्र पासवान का जनकपुरी बेगूसराय बिहार से। लिखते हैं कि जमाना है अगर और एक हम न होंगे बीबीसी सुनने वाले श्रोता कम न होंगे।
क्या शेर लिखा है, वाह भाई आपके मुंह में घी शक्कर। आपने बड़ी रंग बिरंगी कलम से ये चिट्ठी लिखी है, लाल गुलाबी हरे नीले तमाम रंगों में जी।
क्योंकि ये खुशी का इजहार है क्योंकि ये बीबीसी के स्टूडियो में आए थे और यहाँ आके इनको बहुत अच्छा लगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पोस्टकार्ड का हमें इंतजार रहेगा। और इंदु जी एक आखिरी में पोस्ट कार्ड मैं भी पढ़ देता हूं। ये हमारे पुराने श्रोता हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह भदौरिया, ग्राम कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी से लिखते हैं कि बीबीसी की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाते हैं उनकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। बीबीसी पहले भी निष्पक्ष थी, आज भी निष्पक्ष है। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पास समय कम है। श्रोताओं को पता एक बार फिर से बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं माने जाएंगे। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों का बहुप्रतीक्षित 2+2 सम्मेलन आज दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और कुछ ऐसे समझौतों पर दस्तखत किए जो लंबे समय से लटके हुए थे। उत्तरी जापान में ताकतवर भूकंप के बाद आए भूस्खलनों में कई परिवारों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो दब गए थे। होकाइडो द्वीप पर आए भूकंप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लापता हैं। दक्षिण कोरियाई प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति मून जे इन 3 दिन बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से प्योंगयांग में मुलाकात करेंगे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में अधिकारियों ने बताया है कि एक पुलिसकर्मी ने अपने कम से कम 9 सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी और तालिबान से जा मिला। रेडक्रॉस का कहना है कि उत्तर कोरिया में भीषण बाढ़ के कारण कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लापता हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही, आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने। देश दुनिया की खबरों और विश्लेषण के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। और फिलहाल कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति, नमस्कार।